मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 24 जनवरी 2019 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं अपनी बात थोड़ी सी एक नए अंदाज में शुरू करना चाह रहा हूं और उसका एक रीजन है। पिछले काफी समय से मुझे बीच बीच में मेल आते रहते थे कि सर ये जो 15 दिन की क्लासेस होती हैं ये किस मायने में आपके YouTube पर जो दूसरे प्रोग्राम डले हुए हैं उनसे अलग हैं। लगातार इस तरह के प्रश्न पूछे जाते रहते थे। मैं अप्रत्यक्ष रूप से उनके उत्तर देने की कोशिश करता था लेकिन मुझे लगा कि इस बारे में मुझे थोड़ी सी और बातों को क्लियर करना चाहिए। आज मुझे एक मेल मिला है, मैं उस मेल के शब्द आप लोगों के सामने रख रहा हूं। ये मेल है पवित्र अरोरा जी का, जिन्होंने ये नहीं लिखा है कि वे कहां से हैं, पवित्र अरोरा, और उन्होंने लिखा है कैन यू प्लीज कन्फर्म दैट इफ द लेक्चर्स एडेड ऑन यू ट्यूब एज IAS कोर्स गाइड विल नॉट बी रिपीटेड इन द 15-day कोर्स एट योर एकेडमी, होप टू फाइंड योर रिप्लाई सून। जो उन्होंने लिखा है कहने का मतलब है कि क्या आप मुझे ये कन्फर्म करेंगे कि YouTube पर जो आपके ऑलरेडी प्रोग्राम अवेलेबल हैं जिसमें आप IAS की तैयारी के बारे में गाइड करते हैं, जो 15 दिन की जो क्लासेस होंगी उसमें उनको दोहराया नहीं जाएगा। ये इन्होंने जानना चाहा है। ठीक है, मैं अभी इसके बारे में जवाब दूंगा लेकिन मुझे लगता है कि इसके उत्तर के रूप में मैं फिर से अगर एक मेल पढ़ता हूं तो शायद काफी कुछ आप लोगों को स्पष्ट हो जाएगा। हालांकि अब जो मैं मेल पढ़ने जा रहा हूं, इस तरह के मेल लगातार रोजाना हमारे अपने स्टूडेंट्स के आते हैं। हमारे अपने स्टूडेंट कहने का मतलब है कि जो क्लासेस अटेंड कर चुके होते हैं, लेकिन मित्रों उन्हें दोहराने की जरूरत नहीं होती है, बार बार बताने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन ये कुछ अवसर ऐसा है कि पहले मेल के का उत्तर मुझे काफी कुछ इस मेल में दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं ये मेल पढ़ रहा हूं। ये भी सेम डे पर लिखा गया मेल है और इसको लिखने वाले हैं मिलन आनंद। मिलन आनंद ने ये मेल लिखा है और देखिए वो क्या लिखते हैं। उन्होंने हिंदी में लिखा है, नमस्ते सर, मेरा नाम मिलन है, मैं 9th बैच का विद्यार्थी हूं। सर आपका बहुत बहुत आभार करने के लिए मैंने ये मेल लिखा है। मैं अपने कुछ अनुभव साझा करना चाहता हूं। सर मैं क्लास में आने से पहले NCERT की किताबें पढ़ चुका था, उसकी जैसी तैसी नोट भी बनाई हुई थी पर कुछ समझ नहीं रहा था, मुझे संतोष नहीं हो रहा था और क्लास से जाने के बाद मैंने NCERT की किताबें पढ़ना शुरू की तो जैसे जादू सा हो गया हो, मुझे सब अच्छे से समझ में आ रहा है। मैं उसको दूसरे सब्जेक्ट से कनेक्ट भी कर पा रहा हूं, बहुत ज्यादा नहीं पर कर रहा हूं और आपके आशीर्वाद से जल्द ही अच्छे से भी करने लगूंगा। पढ़ने में मुझे ज्यादा मजा आ रहा है, जल्दी पढ़ पा रहा हूं, सब फैक्ट्स भी याद रह जाते हैं। सर फिर से आप मेरा धन्यवाद स्वीकार कीजिए, थैंक यू सो मच सर। Every day I miss that 15 golden days in my life। मिलन तुम्हारे इस अनुभव को व्यक्त करने के लिए बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। तो पवित्र अरोरा ने जो बात जो जानना चाहा था उसका थोड़ा सा उत्तर आप लोगों को इसमें शायद मिल गया हो लेकिन मैं थोड़ा सा और स्पष्ट करना चाहूंगा। देखिए जो YouTube पर प्रोग्राम डाले गए हैं वो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में होते हैं और बहुत वो एक इशारे के तौर पर होते हैं, दैट्स ऑल। लेकिन ये जो 15 डेज की क्लासेस होती है, मोर देन 90 आवर्स तक आपसे बातचीत की जाती है और सबसे बड़ी बात है कि उसमें तो केवल ये बताया गया कि ऐसा ऐसा करना चाहिए, यहां करके दिखाया जाता है, करके बताया जाता है, यानी कि उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर ध्यान दिया जाता है। और देखिये सबसे बड़ी बात जो है वो है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए आपको सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे चाहिए, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। स्टूडेंट को बहुत बड़ा भ्रम है इस बात को लेकर के, रहता है कि वो सिविल सर्विस के हिसाब से पढ़ना जानते हैं, नो डाउट आप पढ़ना जानते हैं, आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, लेकिन सिविल सर्विस जिस तरह की मांग करता है, जिस तरह के वो प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्नों के जिस तरह से आपको जवाब देने होते हैं, उसके लिए हमें पढ़ने के अपने ढंग में बदलाव करना जरूरी होता है। अब यहां जो 15 दिन की क्लासेस होती हैं फ्रेंड्स, उसमें 4 सब्जेक्ट पर तो हम लोग बहुत डिटेल में बात करते हैं उनके बेसिक्स पर कि इन सब्जेक्ट्स को आप पढ़ेंगे कैसे। इकोनॉमिक्स पर बहुत डिटेल में बात होती है, लगभग 8 क्लासेस, एक क्लास 1.5 घंटे की होती है, हम इकोनॉमिक्स पर बात करते हैं एक ही सब्जेक्ट पर। इतनी ही क्लासेस लगभग ज्योग्राफी के लिए होती हैं, इतनी या इससे 1-2 क्लासेस पॉलिटिकल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी और इंटरनेशनल अफेयर्स पर होती हैं, इतनी ही क्लासेस लगभग हिस्ट्री पर होती हैं, जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री पर भी बात की जाती है। इसके बाद 4th पेपर के प्रिपरेशन पर बहुत ही बेसिक बात की जाती है कि आप कैसे इसको समझेंगे, कैसे आप लिखेंगे। कॉम्प्रिहेंशन पर बातें होती हैं, जिसे आप परिच्छेद कहते हैं, जो आपके सी सेट का हिस्सा होता है। डिसीजन मेकिंग के बारे में बताया जाता है कि डिसीजन मेकिंग के जो प्रश्न होते हैं इन्हें आप कैसे सॉल्व करेंगे, और बकायदे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर आधारित होते हैं वो चीजें, डिस्कशन के माध्यम से किया जाता है। और इसके बाद निबंध कैसे लिखा जाना चाहिए, बकायदे निबंध का टॉपिक चुन करके उनके पॉइंट्स कैसे निकाले जाएं, उस पर डिटेल में बात होती है। आंसर राइटिंग कैसे की जानी चाहिए, इस पर कुछ क्लासेज होती हैं जिसमें बकायदे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑलरेडी एग्जाम में, उनके आंसर आप कैसे कैसे निकालेंगे, किन किन पॉइंट्स को टच करेंगे, किन को इग्नोर करेंगे, ये सारी बातें होती हैं। और मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी बात YouTube पर उस तरीके से अवेलेबल है। तो दोस्तों, मैं अपनी ओर से तो केवल इतना ही कह सकता हूं कि ये अपने तरह की बहुत ही अलग तरह की क्लासेस होती हैं, एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होता है, जैसा कि अभी आपने मिलन के ईमेल से शायद थोड़ा बहुत अनुभव भी किया हो। तो मुझे लगता है कि इतनी बातें शायद आप लोगों के लिए सफिशिएंट होंगी। और यहां का जो पूरा का पूरा मैनेजमेंट होता है, जो पूरी की पूरी व्यवस्था होती है, वो सच पूछे तो आपके खासकर व्यवहार को, आपकी बहुत सी आदतों को बदलने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप अपने अंदर बहुत सकारात्मक परिवर्तन महसूस करते हैं, और सही अर्थों में आप अपनी ऊर्जा को भी शायद पहली बार इतने अच्छे तरीके से सकारात्मक रूप में पहचान भी पाते हैं। मित्रों, और भी दूसरी छोटी मोटी एक्टिविटीज हम लोग कराते रहते हैं, जो क्लास और एजुकेशन या हमारे सिविल सर्विस प्रिपरेशन से रिलेटेड होती है। कुछ हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट आते हैं, सिविल सर्वेंट्स होते हैं, वो आपसे बातचीत करते हैं, उनको देखने से, उनसे मिलने से, उनसे बातचीत करने से आप लोगों के अंदर एक अलग किस्म की भावना पैदा होती है। मैं हर समय स्टूडेंट्स से बात करता रहता हूं, व्यक्तिगत रूप से अवेलेबल रहता हूं, वो एक अवसर होता है। फिर जब क्लासेस खत्म हो जाती हैं, फिर 50 टॉपिक पर आपको लेक्चर्स, स्पेशल ऑडियो गाइडेंस भेजे जाते हैं, ताकि साल भर तक आपका बकायदे इस एकेडमी से नाता बना रहे। और यहां तक कि अगर हम कुछ और नया काम करते हैं तो हम पुराने स्टूडेंट्स को भी उसमें शामिल करते हैं। दोस्तों, तो ये एक छोटी सी जानकारी मैंने आप लोगों को दी है, और मैं समझता हूं कि इससे शायद आपके दिमाग में अगर यहां की 15 दिन की क्लासेस को लेकर कुछ और सवाल होंगे तो उसके उत्तर मिल जाएंगे। और यदि आप लोग कुछ और भी उत्तर चाहते हैं तो बकायदे आपके प्रश्न आमंत्रित हैं, आप पूछें, मैं हर संभव कोशिश करूंगा कि आपकी जिज्ञासाओं को शांत कर सकूं। मित्रों, आज के मुख्य विषय के रूप में मैं आपसे एंजल टैक्स के बारे में बातें करूंगा, लेकिन दो छोटी छोटी खबरों की तरफ पहले मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पहला, न्यूज में आपने सुना होगा पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, जैसे असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, है ना, ये अनुसूचित क्षेत्र हैं। इन छठी अनुसूची में आप जाएंगे तो इन अनुसूचित क्षेत्र के जो संस्थाएं हैं, जो स्वायत्त परिषद हैं, इनको और अधिक अधिकार दिए जाएं, इसके बारे में मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है, कैबिनेट ने निर्णय लिया है। इसको अब इस बटने चढ़ लेगी, चूंकि संविधान का मामला है तो इस पर एक विधेयक आएगा, और मान करके चलिए कि यह विधेयक स्वीकृत भी हो जाएगा। देखिए, यह बहुत ही अनजाना सा विषय लगता है सुनने के उपाय, और जनरली स्टूडेंट इसको इग्नोर कर देते हैं। मैं आपको सतर्क करना चाहूंगा कि बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। जब इस पर विधेयक आएगा, डिस्कशन होंगे या पारित हो जाएगा, तब मैं इस टॉपिक पर आपसे विस्तार से बात करूंगा, आप इस पर गौर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद एक छोटी सी खबर और है दोस्तों, कि जो जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर का जो अपीलीय न्यायाधिकरण है, अपेलाइट ट्रिब्यूनल से उसकी राष्ट्रीय पीठ के बारे में भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और ये राष्ट्रीय पीठ दिल्ली में होगी। और खासकर इसका पर्पज ये होगा कि अगर राज्यों के बीच आपस में कोई विवाद है या राज्य और केंद्र के बीच में कोई विवाद है तो बट नेचुरल है कि वो इस राष्ट्रीय पीठ में अपील कर सके और उनकी सुनवाई हो सके। फ्रेंड्स, करेंट कंटेंट के तहत आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आपको मटेरियल प्रोवाइड किया गया, आर्टिकल प्रोवाइड किया गया है, जलवायु अनुकूलन कृषि। जलवायु अनुकूलन कृषि जो द हिंदू में छपा था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर प्रश्न भी बकायदे पूछे गए हैं और आज जो मैं न्यूज़पेपर्स की आपको क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं तो उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया का बकायदे एक आर्टिकल भी है, मेक इंडिया क्लाइमेट स्मार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप जरूर ध्यान से पढ़िएगा और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट भी कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आइए अब मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा आपसे एंजल टैक्स। कल मैंने एंजल इन्वेस्टर्स के बारे में आपको बताया था और मुझे विश्वास है कि वह आपकी समझ में आ गया होगा। तो आप देखिए, एंजल टैक्स का क्या मतलब हुआ कि जो एंजल इन्वेस्टर हैं, जो स्टार्टअप में पैसा लगाते हैं और उसके साझेदार बन जाते हैं, उन पर सरकार टैक्स लगा रही है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। स्टार्टअप के बारे में अक्सर आप खबरें पढ़ते होंगे कि लगभग 96-97% जो स्टार्टअप्स हैं वो फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, इक्के दुक्के ही सफल हो पाते हैं। असल में मामला दोस्तों इसके साथ मनी लॉन्ड्रिंग का जुड़ा हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब आप समझते हैं कि जो काला धन है हमारा, हम काले धन को कैसे सफेद धन में कन्वर्ट करें, यानी कि जो हमारा इलीगल मनी है, ऐसा मनी, ऐसा धन जिसके बारे में हमने सरकार को जानकारी नहीं दी है, जिस पर हमने टैक्स नहीं चुकाया है, उसको हम कैसे एक तरह से वैध मुद्रा में परिवर्तित कर सकें, लीगल मनी में कन्वर्ट कर सकें, राइट? तो आप सुनते होंगे कुछ टैक्स हेवन स्थान बने हुए हैं, जैसे मॉरिशस या कुछ ऐसे स्थान बने हुए, वर्जीनिया वगैरह, कि वहां पर अगर आप कोई भी व्यापार करते हैं आपको टैक्स नहीं देना पड़ता, वहां के बैंक में आप कुछ भी पैसा धन जमा करते हैं आपको बताना नहीं पड़ता कि यह धन कहां से आया हुआ है। ऐसे स्थानों को कहते हैं टैक्स हेवन, यानी कि टैक्स वालों के लिए एक स्वर्ग है वो, राइट? इस पर 4-5 साल पहले क्वेश्चन भी प्री में पूछा गया था टैक्स हेवन पर। अब आप देखिए कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कि चलो मैं अपने को ही रख देता हूं कि मेरा 100 करोड़ रुपए टैक्स हेवन की जगह पर है, 100 करोड़ रुपए वहां है, वहां मैंने इकट्ठा किया है पैसा। अब मैं चाहता हूं कि यार वो पैसा मैं भारत तो लाऊं, लेकिन भारत में मैं लाऊं कैसे, ये तो बड़ी मुश्किल है। तो अब मैं क्या करता हूं कि मैं एक स्टार्टअप कंपनी बनाता हूं, भारत में खोलता हूं स्टार्टअप कंपनी और मैं वहां उस देश में भी स्टार्टअप कंपनी खोल लेता हूं छोटी सी। अब मैं अपने ही पैसे को अपने ही यहां भारत के स्टार्टअप कंपनी में भेजता हूं। जैसे मान लीजिए कि मेरी कंपनी की वैल्यू 10 करोड़ है, ठीक है, उसकी वैल्यूएशन होती, कंपनी की वैल्यूएशन होती है, अखबारों में बीच बीच में आप पढ़ते भी होंगे कि इस कंपनी का इतना वैल्यूएशन है। तो मैं सोचता हूं कि यार मैं इसके 1 करोड़ रुपए मैं यहां इन्वेस्ट कर देता हूं, तो मैं वहां से 1 करोड़ रुपए इंडिया भेज देता हूं और इस 1 करोड़ रुपए के बदले में वो मुझे 10 करोड़ रुपए के शेयर दे देते हैं, 10 करोड़ रुपए के शेयर। अब आप देखें कि यहां 9 करोड़ रुपए का फर्क रह जाता है, तो इस 9 करोड़ रुपए पर टैक्स मिलना चाहिए, क्योंकि देखिए 1 करोड़ रुपए मैंने दिए कंपनी को, 10 करोड़ रुपए के शेयर वो मुझे दे रहा है, तो 9 करोड़ रुपए का फायदा हो रहा है ना मुझे, तो मुझे 9 करोड़ रुपए का फायदा हो रहा है कि 1 करोड़ देने के बदले में मुझे 10 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। तो ये जो 9 करोड़ रुपए जो एक्स्ट्रा जो लाभ मिल रहा है, इस पर टैक्स लगाया जाना चाहिए। उसका फायदा यह होगा कि इस तरीके से जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, उस मनी लॉन्ड्रिंग पर थोड़ा सा नियंत्रण लग सकेगा और कम से कम ये तो होगा कि उस पर आयकर सरकार को मिल रहा है और ये जो पैसा जो वहां भेजा गया है या आप यूं कह लीजिए कि ब्लैक मनी के रूप में वहां मौजूद है, वो वही पैसा है जिस पर हमने इनकम टैक्स नहीं दिया है। आप इनकम टैक्स दे दीजिए तो वही मुद्रा आपकी व्हाइट मनी हो जाएगी, तो उस मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके उसके लिए यह टैक्स लगाया गया है बेसिकली। और आप जानते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के और दूसरे कितने जबरदस्त रूप से साइड इफेक्ट्स हैं, उस पर हम लोग फिर कभी बातें करेंगे। तो मित्रों, अब मेरी समझ से यह टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। अब जब आप किसी भी किताब में इसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स में आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप देख लेंगे। और खासकर बिजनेस स्टैंडर्ड की जो आज क्लिपिंग है फ्रेंड्स, संपादकीय उपाय सही अमल कठिन, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल कमेंट है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं ईमेल पर। सभी ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं। रुचिका सैनी हरिद्वार उत्तराखंड से, आकाश मिश्रा सागर मध्य प्रदेश से, रुपिंदर कौर विर्क, विवेक धवन न्यू दिल्ली से, नेहा झा, कौशिक दास, मिलन आनंद और तनुप्रिया सिंह मोहाली पंजाब से, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।